जय राधा माधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर मीरा रोड मुंबई में 10 अप्रैल 2006 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्य चक्षुरान्मीलितानेना श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्वयं वंदे
कृष्णा। तो कुछ दिन पहले आप भक्तों ने राम नामी उत्सव मनाया था इस मंदिर में, यहाँ अभिषेक तो नहीं किया। हमारे कई मंदिरों में वो गृहस्थ सीताराम लक्ष्मण हनुमान ले आते हैं मंदिर में अभिषेक करने के। तो नौवें स्कंद में संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो आज हमको आपको एक श्लोक पढ़कर सुनाएंगे नौवें स्कंद का। नादि व्याधि जरा ग्लानि दुःख शोक भया क्लमा मृत्यु चनि चतम नासेद राम रजन अधोक्षजे। श्लोक अनुवाद इस प्रकार से है। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, बिछो, पछताप, दुख, डर तथा थकावट का नाम निशाना न था। यहाँ तक कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं होती थी। बड़ा अच्छा है ना, कहा जा रहा है कि न चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं। अगर आज के जमाने आपको एक छूट मिल जाए तो कोई चाहेगा मृत्यु? सच बोलिए, चाहेगा? पर राम राज्य के समय लोगों की इतनी अच्छी बुद्धि थी कि हालांकि उनके उन्हें छूट दी गई थी कि आप अपना मृत्यु के समय भी चुन सकते हो और नहीं चाहिए मृत्यु तो चलो मृत्यु से भी मुक्त हो गए। पर लोगों की बुद्धि ऐसी थी कि वो समय के साथ मृत्यु की तैयारी भी करते थे और मृत्यु को भी स्वीकार कर दोगे। हालांकि सुविधा थी, नहीं चाहिए तो मृत्यु से भी मुक्त। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान रामचंद्र जब इस जगत के राजा थे, दूसरे शब्दों में जब राम राज्य हो रहा था इस पृथ्वी पर, तो शारीरिक कष्ट भी नहीं और मानसिक कष्ट भी नहीं। और आज आप क्या देखते हो, शारीरिक कष्ट भी है और मानसिक कष्ट भी है। शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है और मानसिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहा है। आज बच्चों को बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि एक समय बूढ़े व्यक्तियों को होती थी। छोटे छोटे बच्चे आजकल चश्मा पहनते हैं ना, हियरिंग एड पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कभी पहले आपने सपना भी नहीं देखा था। तो भगवान राम के शासन के समय कोई शारीरिक कष्ट नहीं और कोई मानसिक कष्ट भी नहीं, और ना चाहने वालों के लिए मृत्यु भी नहीं। साथ में कहा जा रहा है क्या, रोग नहीं, मतलब कि कोई डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, जैसे भक्तिनाथ हॉस्पिटल है यहाँ, उस समय कोई रोग नहीं, नहीं रोग नहीं हो तो हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बुढ़ापापन भी नहीं, मतलब कि सदा जवान, कोई बुढ़ापापन ही नहीं। आजकल तो हर व्यक्ति बुढ़ापेपन से बचने का प्रयास करता है ना। बूढ़े व्यक्ति को कह दो तुम कितना जवान दिखते हो तो खुश हो जाता है, और जवान को कह दो तुम बूढ़े लग रहे हो तो अपमान महसूस करता है कि नहीं। अगर जवान व्यक्ति की बेइज्जती करनी है तो बोलो तुम तो बूढ़े जैसे दिख रहे हो, और बूढ़े व्यक्ति की खुशामद करनी है तो उल्टा कह दो तुम कितने जवान दिख रहे हो। तो बुढ़ापा में किसी को नहीं चाहिए। इसके लिए आजकल खास करके विदेशों में कई दुकानें हैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटी एजिंग। एंटी एजिंग मतलब कि उस दुकान में वो मसाला मिलता है जिससे तुम बुढ़ापापन छुपा सकते हो, और कुछ नहीं मिलता। बाल को रंग करने के अलग अलग रंग, मेकअप वगैरह, मतलब कि बुढ़ापेपन को छुपा सको। पर भगवान राम के राज्य के समय यहाँ कहा जा रहा है कोई बुढ़ापापन में नहीं। फिर आगे क्या, कोई और बिछोड़ पश्चाताप कि पश्चाताप, हम पछताते रहते हैं भौतिक संसार में सदा, ये खो गया, ये हाथ से फिसल गया, ये मौका मैंने गवा दिया है कि नहीं। किसी और के पास कोई सुविधा हो जो आपके पास नहीं है तो फिर भी आप पछताते हो। फिर दुख, देखा जाए आज के जमाने में तो दुख ही दुख है, पर भगवान राम के शासन के समय कोई दुख नहीं था। डर, आज हम सबका मन भय से भरा हुआ है, सच बात है। जैसे कि आज से 500 साल पूर्व एक वैष्णव कवि ने कहा है, बाजा घोड़े मानसी नंदन नंदना अभय चरण रविंद्र, हे मेरा मन तुम भय से क्या हो, भरे हुए हो। तो पर भगवान राम के शासन के समय कोई भय नहीं था समाज में, कोई थकावट भी नहीं, इन चीजों का नाम निशाना भी नहीं था। ये नहीं कि 90% के पास नहीं था और 1-2 के पास था। तो राम राज्य की चर्चा लोग आज भी करते हैं। भगवान राम स्वयं भगवान है। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि अनादिकाल से अनेक संतों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए मैं केवल संक्षेप रूप में ही इसे प्रस्तुत करूंगा, संक्षेप रूप। तो इसलिए हालांकि राम कथा इतनी बड़ी है और खास करके वाल्मीकि जी ने इसकी रचना की और तुलसीदास, पर श्रीमद् भागवत में केवल 2 अध्याय हैं, केवल जहाँ की सुखदेव गोस्वामी संक्षेप रूप में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो भगवान राम कब प्रकट हुए थे? त्रेता युग के आरंभ में। दूसरे शब्दों में प्रकट हुए थे लगभग 20 लाख साल पूर्व। आप कहोगे याद में 20 लाख साल की गिनती कैसे कर ली? सरल है, 12 लाख साल का था त्रेता युग और 8 लाख से अधिक सालों के थे द्वापर युग। और भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग के आरंभ में। पर आज भी उनकी लीलाओं की चर्चा होती है, खास करके उत्तर भारत में दशहरा के समय रामलीला का उत्सव होता है। और भारत में ही नहीं, कई और विदेश के देश हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ बकायदा राम कथा होती है। आज भी वहाँ रामलीला होती है, क्योंकि इंडोनेशिया भी एक देश है जहाँ के एक समय वैदिक संस्कृति का पूरा प्रभाव था और आज तो लगभग देश मुसलमान बन गया है। तो भगवान राम की लीलाओं का वर्णन होता है हर स्थान, विश्व के कई स्थानों में। और भगवान राम प्रकट हुए थे अपने 3 भाइयों के साथ। क्या थे उनके नाम? लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। पापा जी इसकी तात्पर्य में कहते हैं ये है विष्णु तत्व, जीव तत्व नहीं। तो विष्णु तत्व जीव तत्व में क्या अंतर है? विष्णु तत्व का अर्थ है जब भगवान स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं और जब वो प्रकट होते हैं किसी प्रकार से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। परम बुद्धि के व्यक्ति सोचते हैं भगवान निराकार है, या सोचते हैं ये जो भगवान के विग्रह है जगन्नाथ जी का, राधा कृष्णारी का, ये लकड़ी का है, लोहे का है, ये है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा और ठाकुर पूजा में क्या अंतर है? ठाकुर सेवा में आप मानते हैं कि ये भगवान आर्च विग्रह में स्वयं भगवान उपस्थित हैं, और मूर्ति पूजा में आप क्या सोचते हैं? ये तो मूर्ति है पर इसमें भगवान प्रकट नहीं है। तो परम भगवान जैसे गीता में कहते हैं जन्म कर्म चा में मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही क्या है दिव्य। तो भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपने दिव्य स्वरूप में आते हैं जिसकी तुलना ना कोई कर पाया है ना कर पाएगा। जैसे कि भगवान राम ने भी दिव्य लीला प्रकट की थी। तो भगवान शब्द किसके लिए उपयोग किया जा सकता है? भगवान शब्द उनके लिए उपयोग कर सकते हो जिसमें असीम मात्रा में क्या हो, 6 प्रकार के ऐश्वर्य। एक है सबसे धनी, सबसे वीर, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, ज्ञानी और वैराग्य त्यागी। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, अद्भुत लीला की तुलना कोई कर नहीं सकता। ये समझना आवश्यक है क्योंकि आज के जमाने में कई लोग ये दावा करते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। नहीं करते हैं कि नहीं करते? बहुत लोग करते हैं, पर हम उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं किसी रूप से इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते। तो भगवान राम ने भी अद्भुत लीला प्रकट की, भागवत में तो इसका वर्णन संक्षेप रूप में ही है। जैसे कि जब सीता के पति चुनने का समय था तो कई राजकुमार आए थे सीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। क्या आवश्यक था कि एक बहुत भारी धनुष था, शिवजी का धनुष, जिसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कितने? पर भगवान राम ने जब तोड़ना था, जैसे एक हाथी गन्ने को तोड़ता है सानी से, वैसे उन्होंने तोड़ा। दशरथ की तीन पत्नियां थी और जिनमें एक पत्नी कैकेयी ने एक समय दशरथ का सहयोग दिया था एक कठिन परिस्थिति में, जिसके कारण दशरथ ने कहा था कि मांगो मेरे से क्या मांगना चाहते हो, तुमने मुझे कठिन स्थिति में सहयोग दिया है, क्या मैं कर सकता हूं आपके लिए। कैकेयी होशियार थी, उसने कहा कि इस वक्त तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ठीक समय पर आपसे मांगूंगी। और दशरथ क्या चाहते थे कि उनके बेटे का राजा अभिषेक किया जाए। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार चार वर्ण और चार आश्रम होने चाहिए, और वो चार वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और चार आश्रम क्या है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। ये नहीं कि जैसे आज के जमाने में अब कुर्सी में बैठे रहो अंत तक, हार्ट अटैक या कोई गोली के कारण ही छोड़ते हो, नहीं तो कोई कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता सच बात है। पर प्राचीन समय में ये रिवाज नहीं था। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि उनके सबसे बड़े पुत्र राम का राजा अभिषेक किया जाए, तो इसलिए पूरा अयोध्या सजा हुआ था, सड़कें सजी हुई थी और बैंड बाजा बज रहे थे। क्यों क्यों? अगले दिन सुबह भगवान राम का अभिषेक होने की योजना थी, तो अगले दिन सुबह राम भगवान राम के राजा अभिषेक की तैयारी हो रही थी। तो उस समय कहके ही बड़ी होशियार औरत थी, भगवान राम थे कौशल्या के पुत्र। कई बार आप देखते हो व्यक्तियों में ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहती है, नहीं रहती, खास करके कहते हैं औरतों में जरा ज्यादा द्वेष रहता है। तो कहें कि इच्छा क्या थी कि राम के बजाय मेरे पुत्र को उसका राजा अभिषेक किया जाए। तो उसी समय वो गए कहां दशरथ के और कहने लगी, तुम्हें याद है ना कि तुमने मुझे वादा किया था कि जो मैं मांगूंगी वो पूरा करोगे, तो आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, पहले ये बताइए कि ये इच्छा पूरी करोगे। आज के जमाने में तो अगर आपके पास लिखित एग्रीमेंट हो स्टैम्प पेपर में भी, तो भी उसकी कुछ खास कदर होती है, नहीं होती, ठीक है कोर्ट में लड़ लेंगे। प्राचीन समय में वचन ही बहुत था, खास करके क्षत्रिय का ब्राह्मण का। तो दर्शन ने कहा हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहीं ने कहा मांगो, आप अपने बेटे को राम को वनवास में भेज दो, एक दो सालों के लिए नहीं 14 सालों के लिए, और उसके बजाय मेरे पुत्र को उसका राजा अभिषेक होना चाहिए और राज्य का शासन उन्हें देना चाहिए। दशरथ ने वचन दिया हुआ था कि जो कैकेयी मांगेगी वो पूरा करेंगे, तो हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, मजबूरन उन्हें कहना पड़ा, हाँ किससे, भगवान राम से, जाओ जंगल में। तो यहां भगवान ने अपने त्याग या वैराग्य की भावना प्रकट की। भागवत में उदाहरण दिया जाता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति जब उसके मृत्यु का समय आता है, जब उसे दिखता है कि मृत्यु आ रही है, घबराता नहीं है। साधारण व्यक्ति तो घबराता है, कोई मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता। जो अध्यात्मिकवादी है, आत्मज्ञानी है, उसे पता है कि अगर हमने अपना जीवन उपयोग किया है भगवान के सेवा में, कोई भय का प्रश्न नहीं है। भगवान राम ने पिता के आदेश को स्वीकार करके गए जंगल की ओर, जंगल की ओर जाने की तैयारी की। वो तो अकेले जाने को तैयार थे, और सीता ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम ने कहा तुम तो राजकुमारी हो, महलों में पली हो जिंदगी भर, तुम कहां जंगल का कष्ट भुगत सकोगे। और सीता ने कहा नहीं, पति के रूप में मेरा कर्तव्य है आपके साथ चलूं। और फिर भाई लक्ष्मण भी साथ में गए। कैकेयी बहुत होशियार थी, इसने केवल ये नहीं कहा कि राम के बजाय भारत को राजा बना, नहीं, उसने कहा उसको जंगल में भेजो 14 सालों के लिए दूर। क्यों? क्योंकि उसे भय था कि अगर भारत का शासन हो और राम भी अयोध्या में ही है तो किसी समय भी, अंग्रेजी में कहते हैं कुदियता हो सकता, कुदियता समझते हो, कुदियता कहते हैं समझो कोई राजा है प्रधानमंत्री है तो मिलिट्री का चीफ आता है कहता है हमको दो कुर्सी नहीं तो, जैसे कई बार पाकिस्तान में होता है कुदियता। तो उसको डर था कि अगर राम यहाँ ही रहे तो मेरे बेटे के शासन को खतरा है। दूसरा उन्होंने कहा क्योंकि थोड़े दिन के लिए भेजा गया, थोड़े सालों के लिए, फिर भी बेटे के शासन को खतरा हो सकता है। पर रामचंद्र जी ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया पिता का आदेश। उन्होंने ये नहीं कहा पिता ये कैसे संभव है मैं जाऊं, पूरा राज्य पूरी सभा ये उम्मीद कर रही है कि मेरा अभिषेक होगा कल। उन्होंने कुछ बहस की, तुरंत एकदम चले घर से अयोध्या से, जैसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला के बीच में प्रकट हो जाते थे अपना वैराग्य की भावना को प्रकट। तो सीता को किडनैप किया किसने, रावण ने, वो असली सीता नहीं थी, माया सीता, असली सीता को कोई छू नहीं सकता। खैर जब समय आया श्रीलंका जाने के लिए तो भगवान गए समुद्र के छत पर, 3 दिन के लिए वहां रुके, पर समुद्र ने उन्हें कुछ आदर नहीं दिया, ना ही सेवा की भावना प्रकट की। जब 3 दिन बीत गए और समुद्र ने किसी प्रकार से सेवा की भावना भी प्रकट नहीं की तो भगवान ने अपने क्रोधित नेत्रों से देखा समुद्र की ओर, और समुद्र ने वो नेत्रों के क्रोध की गर्मी को महसूस किया, सारी योनियां जो थी सब कांपने लग गई। समुद्र समझ गया कि स्वयं भगवान है और हमें इनके आदेश को पूरा करना है। भगवान ने अपनी सेना के साथ क्या किया, श्रीलंका जाने की योजना बनाई। 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक है दैविक एक है भौतिक। दैविक शक्ति का अर्थ है कि आप प्रयास करते हो, निर्भर रहते हो भगवान की कृपा पर। भौतिक शक्ति का अर्थ है कि आपकी श्रद्धा विश्वास है आपकी भौतिक योजना में। तो जो भक्त हैं वो दैविक शक्ति में ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने ये निर्णय कर लिया था, क्योंकि दोनों ही उनके रिश्तेदार थे, कि मैंने किसी का पक्ष नहीं लेना। और जब दोनों सेनाओं को ये छूट दी गई कि अब चुनो, तो जो कौरव थे उन्होंने चुना क्या, भगवान की सेना को। क्योंकि दुर्योधन ने सोचा भगवान ने तो निर्णय दे दिया है कि उन्होंने युद्ध में नहीं लड़ना, तूने हमारी तरफ रखकर क्या फायदा। और पांडव थे वो ज्यादा होशियार थे, उन्होंने कहा हमें कृष्णा चाहिए, उनकी आधुनिक सेना सेनापति हथियार नहीं चाहिए। तो उसी प्रकार जब भगवान राम अपनी सेना के साथ जाने थे कहां, श्रीलंका रावण से लड़ने के लिए या सीता को वापस लाने के लिए, तो भगवान राम के सेना में केवल 2 व्यक्ति थे जिनमें धनुष चलाने की भी शक्ति थी, वो कौन थे, राम और बाकी तो सब थे बंदर। बंदरों की सेना थी। पर यहाँ फिर से भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। जब पहाड़ की चोटियों को और पत्थरों को फेंका जा रहा था तो ये डूबने की बजाय तैर रहे थे। अब भगवान के लिए क्या कोई कार्य असंभव है? जैसे कि आज हजारों क्या लाखों ग्रह हैं, ग्रह लोग प्लैनेट्स, और ये सारे प्लैनेट जो हैं, ये ग्रह, ये तैर रहे हैं ब्रह्मांड में, ये डूब रहे तो नहीं है। कैसे तैरते हैं? हवा को मैनिपुलेट करके। जैसे आप देखते हो आज के जमाने में अनेक हवा, अभी आप बॉम्बे एयरपोर्ट जाओ वो एयरपोर्ट आपको ट्रेन स्टेशन जैसे दिखता है, क्योंकि आजकल इतने हवाई जहाज इतने, पहले तो आप एयरपोर्ट में जाते थे जरा शान से बैठते थे, आज जाओ पूरी भीड़ है जैसे बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन में, उतना बड़ा नहीं पर लगभग, क्योंकि आजकल इतने हवाई जहाज हैं। तो आज किसी एक समय आकाश में हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं एक साथ, और ये हवाई जहाज कैसे तैरते हैं? हवा के मैनिपुलेशन से ना, उनके पास पंखे होते हैं जिसके कारण वो तैर पाते हैं। परम भगवान हवा के मैनिपुलेशन से ये जो अनेक ग्रह लोग हैं, ग्रह हैं, ये हवा में ही तैरते हैं। तो भगवान के लिए पत्थर फेंकना और उन्हें तैराना कोई असंभव कार्य नहीं था। रावण के कितने सिर थे? रावण का अर्थ क्या है? जो दूसरों को रुलाता है। हम सबका परिचय है कि रावण दुष्ट राक्षस था, पर वो थे भगवान के भक्त। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें जन्म ग्रहण करना है तो किसी राक्षस दुष्ट व्यक्ति का दो, पर सदा हम भगवान की संगत में रहें। तो जब भगवान राम लौटे, जैसे आज भी लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं ना, खास करके जब चुनाव का समय आता है तो अनेक नेता क्या कहते हैं, हमको वो हमको वोट दो हम तुम्हें राम राज्य देंगे। तो राम राज्य क्यों कहते हैं? क्यों, जैसे आज के श्लोक में हमने पढ़ा, उस समय ना कोई मानसिक कष्ट था ना शारीरिक कष्ट, सुखी सुख। तो जब भारत को सूचना पहुंचे कि भगवान राम लौट रहे हैं, तो भारत अपने मंत्रियों के साथ और पूरे अयोध्या की प्रजा उनका स्वागत करने गई। और भारत का चरित्र देखो, आचरण देखो, 14 सालों के लिए उन्होंने जो शासन किया, भगवान राम के खड़ाऊ को सिंहासन में बिठाया था, मतलब कि उनके बिहाफ पर उनकी तरफ से शासन। और खाने के लिए क्या खा रहे थे? जौ, जौ की गाय मूत्र से बनी हो। तो राम राज्य के समय भागवतम के अनेक श्लोकों में यह बताया जाता है कि भगवान राम पूरी प्रजा को अपनी औलाद समान बच्चे जैसे पाल रहे थे, और पूरी जो प्रजा है भगवान राम को पिता के रूप में स्वीकार कर रही थी। आज आप ये उम्मीद रख सकते हो आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आपको अपनी औलाद जैसे पालें और आप उन्हें पिता जैसा आदर दो, उम्मीद कर सकते हो? शास्त्र में कहा गया है, खास करके श्रीमद् भागवतम में, कि जो राजा है, जो शासन करता है, उसका कर्तव्य बनता है कि समाज की सब आवश्यकताओं को, प्रजा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और उनकी पूरी सुरक्षा दी जाए। भागवत में कथा पढ़ते हो कि एक समय एक राजा थे जिनका नाम था महाराज सिब्बी। बड़े दयालु थे, कोई भी उनके भंडारे में जाता था महल में खाली हाथ नहीं आता था। तो एक समय देवताओं ने निर्णय किया कि हम उनकी परीक्षा लेंगे। तो एक देवता ने एक चिड़िया पिजन का रूप धारण किया, कबूतर, दूसरे ने एक बाज का, और ये बाज जो है कबूतर का पीछा कर रही थी। तो कबूतर पहुंचा महाराज सिब्बी की गोद में, कहने लगा, बचाओ बचाओ, वो बाज मुझे खाना चाहती है, मेरा पीछा कर रही है। और मिनटों में वहां बाज भी पहुंच गई। बाज ने कहा, आपके यहाँ कोई कबूतर आया है? राजा ने कहा, हाँ, मुझे वो कबूतर चाहिए खाने के लिए। राजा ने कहा, हाँ, वो कबूतर मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए, मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकता, पर मुझे मांस चाहिए उसका। राजा ने कहा, हाँ, मेरे शरीर से मांस ले लो। और ये निर्णय हुआ कि जो कबूतर का वजन है उतना ही मांस उनके शरीर का वो कबाज को दिया जाएगा। और क्योंकि देवता परीक्षा ले रहे थे राजा की दया की भावना की, तो कबूतर का जो वजन है बढ़ते गया और राजा का बिल्कुल मुकरा नहीं, वो अपने शरीर का चमड़ा काट कर देते गए। अंत में जो देवता थे वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर अपना असली रूप दिखाया और चमड़े को वापस जोड़ दिया राजा के शरीर के साथ। तो राजा का कर्तव्य क्या है? समाज की सुरक्षा। तो भगवान राम पूरी प्रजा को औलाद के समान पाल रहे थे और इसलिए समाज में कोई कष्ट नहीं, ना मानसिक ना शारीरिक। और अयोध्या की गलियों को कैसे साफ किया जाता था रोज? पहले झाड़ू से और फिर सुगंधित गुलाब के पानी के साथ। आज वॉशिंगटन विश्व का सबसे धनी स्थान है, वहां की सड़कों को भी आप सुगंधित गुलाब के पानी से नहीं धो सकते, बहुत महंगा है। और अयोध्या की सड़कों को साफ किया जाता था कैसे? इस सुगंधित पानी के साथ। प्रश्न यह है कि जो सुख राम राज्य में प्राप्त हुआ था वही सुख आज भी आपको प्राप्त हो सकता है इस कलियुग में, किस साधन के द्वारा? महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। राम राज्य के समय कोई शारीरिक मानसिक कष्ट नहीं, वो सुख आप आज भी प्राप्त कर सकते हो अगर आप महामंत्र का उच्चारण करो। जैसे कि आप देखते हो टेक्नोलॉजी के सहयोग से गर्मी में सर्दी आ जाती है, सर्दी में गर्मी। आप मिडिल ईस्ट देशों में जाओ, बहुत गर्मी है वहां, और आप अंदर जाओ आपको महसूस ही नहीं होता। घर एयर कंडीशन, दफ्तर एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, टैक्सी एयर कंडीशन, पनीर की दुकान एयर कंडीशन, सब जगह एयर कंडीशन, आपको लगता ही नहीं गर्मी है। और आप रशिया के साइबेरिया में जाओ, वहाँ -40 टेम्परेचर होता है। तो जैसे हमारे भौतिक विज्ञानी गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी पैदा कर देते हैं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो तो आपको वही सुख प्राप्त होगा जो कि दूसरे राम राज्य के समय सुख प्राप्त हो रहा था। हालांकि ये राम राज्य बीता था त्रेता युग में, जो सुख था प्रजा का उसकी तुलना कर सकते हो सतयुग के सुख के साथ। सतयुग के समान सुख व्यक्ति भुगत रहे थे कब? इस राम राज्य के समय। ये राम राज्य के समय भगवान राम ने और सीता देवी जी ने अपने सारे गहने जो हैं बांट दिया था। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया और फिर क्या किया? वापस लौटा दिया राजा को। आज आप ये उम्मीद कर सकते हो, बांट दो संपत्ति ब्राह्मणों को और ब्राह्मण आपको वापस दे देंगे। जय भगवान राम के शासन के समय कई एक ब्राह्मण था जो उनके दर्शन लिए बिना कुछ खाता नहीं था। तो जब वो अपनी यात्रा करके आए, लगभग 2 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, जब वो लौटे अयोध्या में तो उनके भाई ने कहा, ये ब्राह्मण जो है पिछले 2-3 हफ्तों से भूखा है क्योंकि इन्हें आपका दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, भूखा है और प्यासा है। तो भगवान राम ने अपना ही विग्रह निकाल कर उन्हें दे दिया, अलमारी में बंद रखा था क्योंकि भगवान स्वयं उपस्थित थे, और ये विग्रह दे दिया और कहा तुम इस विग्रह की उपासना करो और इस विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो जब हम भगवान के आर्च विग्रह की पूजा करते हैं आर्च मूर्ति के रूप में, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये छोटी सी मूर्ति है या ये बड़ी सी मूर्ति है, इस आर्च विग्रह में भगवान स्वयं। तो अगर आप शारीरिक और मानसिक कष्टों से बचना चाहते हो, अगर आप इन क्लेशों से बचना चाहते हो, अगर आप इन क्लेशों का नाम निशाना नहीं देखना चाहते, और अगर आप मृत्यु से भी बचना चाहते हो, उपाय है कि आप एक आध्यात्मिक ध्येय स्वीकार करो। इस समय जो आपका ध्येय है ये भौतिक है, तो भौतिक ध्येय जो है आपको रुलाएगा, खस देगा, पर भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में लौटो। वैकुंठा, वैकुंठा का अर्थ है जहां की कोई कष्ट भुगतना नहीं पड़े। तो भगवान कहते हैं कहां लौटो, वैकुंठ धाम में लौटो जहां की किसी प्रकार का कष्ट नहीं। और ये जो जगत है इसे हम क्या बुलाते हैं, बुलाते हैं कुंता जगत, जहां की कष्ट ही कष्ट है। तो भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं क्या, लौटो कहां, वैकुंठ जगत। तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि हम परम भगवान के शरणागत हों। उसका साधन क्या है, ये महामंत्र का उच्चारण। भगवान इस कलयुग में अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों में, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान ने पूरी शक्ति डाली है इन दिव्य नामों में। तो हमें इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए नाम और भगवान में अंतर नहीं। भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनंत रूप अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। इन सब के विषय में हमें ज्ञान कहाँ मिलता है, शास्त्रों के द्वारा। शास्त्रों में इस विषय का प्रमाण है, और अगर आप शास्त्र के आधार पर चलोगे फिर आप भगवत प्रेम को हृदय में अनुकूल कर पाओगे। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम हरि नाम के साथ शास्त्रों का भी अध्ययन करें, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, हरि नाम के साथ क्या, भागवतम और गीता का अध्ययन करो। इसीलिए इस गांव के केंद्र में रोज सुबह भागवत का अध्ययन किया जाता है, शाम के समय गीता का, पर हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और अगर किसी हालत हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि नौकरी है, काम है, धंधा है, तो घर में इसका अध्ययन करके इसका लाभ उठा सकते हो। तो भगवान राम की लीलाओं का हमने बड़े बड़े संक्षेप रूप में वर्णन किया, जैसे हमने कहा था शुकदेव गोस्वामी कह चुके हैं कि अनेक तत्वदर्शी व्यक्तियों ने भगवान राम की लीलाओं का वर्णन किया है। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा हमें ये संदेश प्राप्त होता है क्या, कि सबसे उत्तम भक्ति क्या है, भगवान के चरणों में सेवा में जुड़ना। और साधु संघ द्वारा हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस मार्ग में जुड़े रहें। इसलिए शास्त्र में कहा गया क्या, साधु संघ सर्वशास्त्र, सारे शास्त्र का निर्णय क्या है, साधु संगत का लाभ उठाओ। खास करके आज के वातावरण में जहां मुड़ो जहां देखो वहीं माया का प्रभाव है कि नहीं, चाहे दफ्तर में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ। तो अगर आप ये माया के प्रभाव से बचना चाहते हो तो हमें इन आधुनिक हथियारों का लाभ उठाना पड़ेगा। श्री प्रभुपाद जी ने हमें बड़े स्पष्ट रूप से शिक्षा दी है किस प्रकार से आप अपने आप को माया के प्रभाव से बचा सकते हो। जैसे और एक दो महीनों में बॉम्बे में बारिश शुरू हो जाएगी, तो बारिश से अपने आप को कैसे बचाओगे, छाता के द्वारा। तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं देवी शकुन माई मामा माया दुर्दया मामे वामे पपदे माया मताम दुर्दी दे। ये माया का विरोध करना बहुत कठिन है, पर अगर तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का लाभ उठाओगे तो अगर तुम मेरी शरण लोगे फिर तुम्हें इस माया के प्रभाव से बच सकोगे। हरे कृष्ण।